नमस्कार भारत, 19 अक्टूबर दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में होने वाले चुनाव में धांधली के ट्रंप के दावों को राष्ट्रपति ओबामा ने निराधार बताया।
I have never seen in my lifetime or in modern political history any presidential।
भारत में चुनावी मौसम से पहले अयोध्या और राम मंदिर फिर चर्चा में।
वो जानते हैं कि राम मंदिर बना नहीं सकते हैं, तो 260 करोड़ रुपया अलॉट कर दो सरयू के किनारे।
एक मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में हरियाली ही हरियाली, लेकिन आसपास पड़ा है सूखा।
हम पड़े हैं झोंपड़ी में और वहाँ पे इतने इतने अच्छे गांव बने, हमें कोई सुविधा ही नहीं है।
वो सेफ ही है, सीएम का गांव।
अब दिक्कत ऐसी है कि अब कुछ गरीब लोगों को कुछ सावधान नहीं देते हैं। हमारा ये नल भी सरकारी टूटा पड़ा है, इसमें भी कोई नहीं सुन रहा है।
समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकायत न कर वोटरों को रिझाने पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने संकेतों में कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति की दौड़ में पिछड़ने लगे हैं, इसलिए अब वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं और ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उपयुक्त नहीं है। बराक ओबामा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ डोनाल्ड ट्रंप के झुकाव की भी निंदा की है। इक्वाडोर की सरकार ने कहा है कि विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज का इंटरनेट एक्सेस कुछ समय के लिए काट दिया गया है। इक्वाडोर के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विकिलीक्स ने हाल ही में बड़ी संख्या में गोपनीय जानकारी वाले ईमेल लीक किए थे, जिससे अमरीकी चुनाव पर असर पड़ सकता है, लेकिन इक्वाडोर ने वॉशिंगटन के दबाव में ये फैसला करने की बात से इनकार किया है। पारदर्शिता की वकालत करने वाली वेबसाइट विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज 4 साल से लंदन में इक्वाडोर के दूतावास में रह रहे हैं। हाल ही में विकिलीक्स ने डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार संबंधी कई ईमेल लीक कर दिए थे। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की पत्नी असमा अल असद ने कहा है कि उन्हें युद्ध से बचने के लिए सीरिया छोड़कर निर्वासन में रहने की पेशकश की गई थी, जो उन्होंने ठुकरा थी। एक रूसी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में असमा अल असद ने कहा कि उन्हें और उनके बच्चों को विदेश में सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उनके पति राष्ट्रपति बशर अल असद को अस्थिर करना था।
Вы правы в том и в другом. Во-первых, я была здесь.
मैं शुरू से यही थी और कहीं जाने के बारे में मैंने नहीं सोचा। दूसरा ये कि मुझे और मेरे बच्चों को सीरिया से भागने की पेशकश हुई, आश्वासन दिया गया कि सुरक्षा दी जाएगी और पैसे भी। कोई भी समझ सकता है कि ये सब क्यों हुआ। ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि राष्ट्रपति असद पर से लोगों का विश्वास टूट जाए इसके लिए था। ये पेशकश उन लोगों ने की जो सीरिया के थे भी नहीं। ये थे असमा अल असद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति को जानकारी दी है कि नियंत्रण रेखा के पार पहले भी भारत की सेना ने निश्चित निशाने, सीमित क्षमता और आतंकवाद निरोधी अभियान चलाए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि सरकार ने इसके बारे में सार्वजनिक जानकारी दी है। एस जयशंकर ने संसदीय समिति ने पहले भी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स होने के बारे में सवाल पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। इसके पहले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बयान दिया था कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान ऐसा कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ऐसी ये सारे दावे गलत हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक शाखा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के ने एक विवादित प्रस्ताव को पारित करते हुए यरूशलम में मौजूदा ऐतिहासिक अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के दावे को खारिज कर दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से, जहां अगले महीने राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि इस चुनाव में उनके खिलाफ जमकर धांधली होगी। मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप के इस आरोप को निराधार बताया है और कहा है कि शिकायत करने के बजाय ट्रंप अपने लिए वोट जुटाने की कोशिश करें। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए हरिता कांडपाल से।
दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में 8 नवंबर को नया राष्ट्रपति चुना जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के बीच राष्ट्रपति पद के लिए कांटे का मुकाबला है। चुनाव प्रचार के दौरान उठे विवादों में हर रोज नई कड़ियां जुड़ती जा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। ताज़ा कड़ी में महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का साल 2005 का एक टेप सामने आया, जिसके बाद उनकी रेटिंग पिछड़ती नजर आ रही है। उसके बाद उन्होंने एक ताज़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में धांधली की जा सकती है। अमरीका के राष्ट्रपति ने इस आरोप को खारिज किया है और ट्रंप को सलाह दी है कि वो शिकायत करना बंद करें।
I'd advise Mr. Trump to stop whining and go try to make his case to get votes. I have never seen in my lifetime or in modern political history.
मैंने अपने पूरे जीवन या फिर राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव या फिर चुनाव प्रक्रिया को खारिज करते हुए नहीं देखा, और वो भी वोट पड़ने से पहले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इन सब का कोई ठोस आधार भी नहीं है। बराक ओबामा के शब्द। डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कई विवाद खड़े कर चुके हैं। हाल ही में फॉक्स न्यूज की एंकर के साथ झगड़ा हो, या फिर इराक में मारे गए अमरीकी मुस्लिम सैनिक के परिवार और एक जज के साथ जुबानी जंग हो, ट्रंप कई बार सुर्खियां बटोर चुके हैं। मैक्सिको के लोगों को अपराधी और बलात्कारी कहने वाले न्यूयॉर्क के व्यापारी ट्रंप मैक्सिको की यात्रा पर भी गए थे। हाल ही में ट्रंप ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद कार्यभार संभालने से पहले रूस का दौरा करना चाहेंगे। ट्रंप का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नीतियों का गुणगान करना अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को नहीं जंच रहा। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की चापलूसी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो व्लादिमीर पुतिन की नीतियों से प्रभावित हैं। ऐसा अमेरिकी राजनीति में कभी नहीं हुआ है। ऐसा सिर्फ डेमोक्रेट ही नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले तक कुछ रिपब्लिकन नेता भी सोचते थे, जो अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। बराक ओबामा के शब्द। वहीं हिलरी क्लिंटन के लिए विदेश मंत्री रहते हुए निजी सर्वर से ईमेल भेजने का मुद्दा गले की फांस बना हुआ है। हाल ही में विदेश मंत्रालय से ईमेल मामले में जांच एजेंसी एफबीआई से डील करने का प्रस्ताव देने की बात भी सामने आने के बाद हिलरी की साख को बड़ा धक्का लगा है, लेकिन फिर भी हिलरी क्लिंटन दौड़ में आगे नजर आ रही हैं। मनमाउथ यूनिवर्सिटी के मुताबिक हिलरी क्लिंटन ट्रंप के मुकाबले 7वीं सदी की बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब ये कि 47वीं सदी वोटर हिलरी के साथ हैं तो 40वीं सदी ट्रंप का साथ दे रहे हैं। बुधवार को ट्रंप और हिलरी क्लिंटन तीसरी बार प्रेसिडेंशियल डिबेट के लिए लास वेगस में सामने होंगे। पिछली बार की तरह इस बहस के भी धमाकेदार रहने के आसार हैं। पिछली बहस में दोनों ने एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला था। हिलरी क्लिंटन ने महिलाओं को लेकर ट्रंप की सोच पर उन्हें घेरने की कोशिश की, वहीं ट्रंप ने हिलरी के पति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अनैतिक यौन व्यवहार का मसला उछाला।
अमेरिका में होने वाले चुनाव में धांधली के ट्रंप के दावों को राष्ट्रपति ओबामा ने निराधार बताया। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रही थीं हरिता कांडपाल।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
इधर भारत में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले अयोध्या और राम मंदिर फिर चर्चा में है। एक ओर मोदी सरकार हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम के जीवन पर केंद्रित एक म्यूजियम अयोध्या में बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस खबर पर और जानकारी के साथ मोहनलाल शर्मा।
केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा कल प्रस्तावित राम संग्रहालय के लिए जमीन देखने अयोध्या पहुंचे तो उनके सामने कई सवाल मौजूद थे। विपक्ष ने संग्रहालय का काम शुरू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। सवाल राम मंदिर का भी आया और संग्रहालय के नाम पर राम के नाम से राजनीतिक फायदा लेने का भी। इन तमाम सवालों का जवाब महेश शर्मा ने इस अंदाज में दिया।
बीजेपी की 2 साल पहले सरकार आई और हम लोगों ने रामायण परिपथ, कृष्णा परिपथ, बुद्धा परिपथ भी हमने घोषित किए हैं। उसी के तहत ये कार्य और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें हुई हैं 2 महीने पहले। बाकी अगर इसमें कोई राजनीति खोजता तो मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखा ही वैसी।
एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय कटियार ने भी उठाया। उन्होंने प्रस्तावित संग्रहालय को लॉलीपॉप बताते हुए कहा कि सभी जानना चाहते हैं कि राम मंदिर आखिरकार बनेगा कब।
बड़ी भारी मिस्टेक हो रही, राम मंदिर के लिए प्रयास होना चाहिए। ये लाली पापी से काम नहीं चलने वाला। सवाल वही है, कोई ये नहीं पूछता है कि ये सब जमीन क्यों पड़ी हुई है। सब पूछते हैं राम मंदिर कब बनेगा। हम भंडारे में जाते हैं अयोध्या के अंदर मंदिरों के अंदर, तो वहाँ के जो संत महंत आते हैं वो पूछते हैं भैया राम मंदिर कब बनेगा, नेताजी राम मंदिर कब बनेगा।
हाल ही में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने अयोध्या में राम के नाम पर थीम पार्क बनाने की घोषणा की है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रही है। पार्टी का कहना है कि मुद्दा अगर पर्यटन विकास तक सीमित रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे लेकर जो बयान आ रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित लगते हैं। पार्टी प्रवक्ता जूही सिंह कहती हैं,
भाजपा का तरीका है कि जो नेता अनाउंस करता है वो नहीं बोलता है। बाकी विनय कटियार जी भी बोल चुके हैं कि राम मंदिर उनके लिए मुद्दा है, उमा भारती भी बोल चुकी हैं, और योगी आदित्यनाथ भी, और ये रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो ये तो उनकी पार्टी की इंटीग्रिटी होगी कि अदालत में अगर मामला है और ये कहना कि हमारे सांसद बोल रहे हैं और ये हमारा आधिकारिक स्टैंड नहीं है, तो जनता तो इस बात को समझती है।
उधर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव करीब देखकर दोनों पार्टियों को राम की याद आ रही है। पार्टी के नेता मीम अफजल कहते हैं,
मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती है कि राम लल्ला जिनको हमेशा ही याद रखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत कर रहे हैं राम के नाम पर। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आई और 2.5 साल में इनको पहले कभी याद नहीं आई। कुछ लोग हमेशा ये बात करते रहते हैं कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और हम उनसे ये पूछते हैं कि तारीख नहीं बताएंगे। राम के नाम का सियासत के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं समझता हूँ कि राम के चाहने वालों के लिए भी एक अफसोस की बात है।
गौरतलब ये भी है कि देवरिया से दिल्ली की यात्रा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी अयोध्या गए थे, उस दौरे की भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि मीम अफजल राहुल गांधी के अयोध्या दौरे का बचाव करते हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी राजनीति के लिए अयोध्या नहीं गए थे, लेकिन फिलहाल यही दलील दूसरे दल भी दे रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या और राम मंदिर फिर चर्चा में, रिपोर्ट सुना रहे थे मोहनलाल शर्मा। यहाँ कई सवाल उठते हैं, जिनमें एक सवाल विपक्षी दलों का ये भी है कि काठ की एक हांडी चूल्हे पर कितनी बार चढ़ सकती है? क्यों चुनाव से पहले रामलला हर बार याद आते हैं? क्या अयोध्या में मंदिर का मुद्दा रामबाण की तरह है? यही समझने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार अंबिका नंद सहाय से बात की।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी भी विकास के मुद्दे के लिए जानी नहीं गई है। वो कभी राम मंदिर, कभी एंटी कॉपिंग और इस तरह के मुद्दों को वो उछालते रहे हैं। तो विकास, इनका जो नरेंद्र मोदी जी का पहचान था, वो विकास का मुद्दा ये जानते हैं उत्तर प्रदेश में पिट जाएगा। तो अब इनके पास बचता क्या है? सिर्फ वही राम मंदिर या राम का नाम। आज मोदी जी सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि राम मंदिर बना नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, तो संभावना क्या है कि ठीक है भाई 260 करोड़ रुपया अलॉट कर दो सरयू के किनारे और वहां पे राम म्यूजियम बनाओ और भव्य बनाओ, तो जनता समझेगी कि राम के प्रति वफादार है। विनय कटियार जो बोल रहे हैं वो इनका खिलाफत नहीं कर रहे हैं, वो भी यही गेम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव वो भी कूद गए हैं मैदान में, अब वो कहते हैं कि वो भी एक इंटरनेशनल म्यूजियम सरयू तट पे अयोध्या में बनाएंगे। और आप याद करिए, अमित शाह ने आज से 3-4 महीने पहले कहा कि मुकाबला सपा और भाजपा में है। कहने का मतलब क्या है कि एक रहे हैं थीसिस, एक एंटी थीसिस, इनके बीच में मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन बेहतर होने की गुंजाइश। ये खेल बिल्कुल साफ है, लेकिन मेरा मानना है कि ये चल नहीं पाएगा।
आपको क्या लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से राष्ट्रवाद का नारा बुलंद हुआ था, राम का नारा उससे बड़ा नारा है?
मैं तो मानता हूँ चुनाव में ना तो ये राष्ट्रवाद का नारा चल पाएगा और ना राम का नाम चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा कि जनता पूछती है कि भाई ये तो हर चुनाव से पहले आप कह देते हो। अब रहा राष्ट्रवाद का मुद्दा, गौर करिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ये सच है और काबिले तारीफ भी है भारतीय आर्मी के हिसाब से, लेकिन ये भी सच है कि उसके बाद भी आतंकवादी हमले कश्मीर में रोज हो रहे हैं।
आपका कहना है कि चुनाव में ये नारे नहीं चलेंगे, फिर इस तरह की रणनीति क्यों बनती है? कभी राष्ट्रवाद का नारा आता है, कभी पलायन का नारा आता है, ऐसा क्यों होता है?
देखिए, इसके लिए एक शब्द है डेस्परेट। ये इश्यूज की तलाश में है, इनको साफ स्पष्ट है कि इनको कोई इशू मिला नहीं है। इनके पास तिनके का सहारा राम का नाम वो है और वो कर रहे हैं। मगर मेरी अपनी जो समझ उत्तर प्रदेश के बारे में है वो कह रही है कि देखिए अभी भी इनके पास सिर्फ एक असेट है और वो है प्रधानमंत्री का चमकदार चेहरा, और वो जीते थे डेवलपमेंट प्लैंक पे। इनको अभी भी उसी को रिवाइव करना चाहिए, तो थोड़ी बहुत बैतरनी पार्क हो सकती है। तो नरेंद्र मोदी जी के भी जो एडवाइजर्स हैं उनको उन्होंने ये सलाह दिया कि आप ऐशबाग रामलीला में जाइए और राम नाम मंत्र का उच्चारण करिए, सो उन्होंने कर दिया। अब जब मोदी जी ने कर दिया तो सारी भारतीय जनता पार्टी उसको फॉलो कर रही है।
भारत में चुनावी मौसम से पहले अयोध्या और राम मंदिर फिर चर्चा में, ये थे वरिष्ठ पत्रकार अंबिकानंद सहाय। और आइए लगे हाथ देख लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं। हरिता कांडपाल तमाम अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
जी, दिल्ली से छपने वाले अखबारों में भी आज ये मुद्दा छाया हुआ जिस पर अभी हम बातचीत सुन रहे थे। हिंदुस्तान टाइम्स की पहली हेडलाइन है, काफ़ी बड़ी हेडलाइन, राम रिटर्न्स टू यूपी इलेक्शन फ्रंट लाइन, मतलब कि यूपी के चुनावी मोर्चे पर राम लौट आए हैं। इस पर लिखा है कि समाजवादी पार्टी सरयू नदी के किनारे रामलीला थीम पार्क चाहती है, तो भाजपा रामायण संग्रहालय अयोध्या में जल्दी बनवाना चाहती है। बता दें कि कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा जो है अयोध्या गए थे और उन्होंने हनुमानगढ़ी में रामायण संग्रहालय के लिए एक साइट का दौरा किया, और ये भी आरोप लगे कि भाजपा जो है चुनाव आ रहा है इसलिए सब कर रही है। और जैसा कि हम अभी सुन ही रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनाना है, तो ये बहाना भी इस तरह की बात कही जा रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने ये भी खबर दी है कि जो केंद्र सरकार है वो दिसंबर में एक रामायण कॉन्क्लेव भी कराने का कार्यक्रम कर रही है। अब बढ़ते हैं आगे। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भुवनेश्वर में अस्पताल में जो कल आग लगी थी उसके बारे में खबर है कि अग्निशमन विभाग की तरफ से NOC जो दी जाती है वो अस्पताल के पास नहीं थी।
प्रमाण पत्र
जी। तो और 2 महीने पहले ही इसकी आधिकारिक मान्यता रद्द हो चुकी थी, तो ये एक बड़ी बात सामने आई है। इसके अलावा जो कार्रवाई हुई है उसमें 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ये भी संभावना जताई है कि अस्पताल के मालिक को भी पकड़ा जा सकता है। और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सत्तारूढ़ जो BJD है, बीजू जनता दल ओडिशा में उससे उनके संबंध हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है कई लोगों के आप बीती की खबर छापी है। इसमें एक तस्वीर है जिसमें खिड़की है और वो कांच टूटा हुआ है और उसमें से कुछ सामान बाहर डाला जा रहा है, इस तरह की तस्वीर है। और एक सचेत डॉक्टर जो अस्पताल में थे और नर्स, उन्होंने जो है 4 नवजात बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाला। इसमें लिखा गया कि एक महिला बता रही है कि उसका 1 महीने का बच्चा न्यूमोनिया से पीड़ित था, ICU में भर्ती था और उसे मुस्तैदी से डॉक्टर ने बाहर निकाला, खिड़की का कांच तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला। इसी तरह एक डायलिसिस के मरीज ने अपनी आप बीती बताई कि मैं पाइप से उतर कर बाहर निकला और तब जाके मैं अपनी जान बचा पाया। तो ये काफ़ी दुखद घटना उस दिन की। इंडियन एक्सप्रेस की एक और हेडलाइन पर जाते हैं जो सभी अखबारों में ये खबर छाई कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल जो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में अपनी पीठ थपथपाई है सेना की, तो
ऐसा विपक्ष का कहना है कि जी, पीठ थपथपा रहे हैं।
जी। तो मोदी जी का बयान है, उन्होंने कहा है कि पहले सब इसराइल के बारे में सुनते थे कि इसराइल इस तरह की कार्रवाई करता है, लेकिन अब भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। लिखता है अखबार की सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया हिमाचल प्रदेश के मंडी में परिवर्तन रैली में। लेकिन इसी खबर के बिल्कुल बगल में एक कार्टून भी है जिसमें दिखाया गया है कि रक्षा मंत्री ने अगर RSS से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, जो कुछ नहीं सीखा वो है लक्ष्मण रेखा। एक्चुअली ये सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर रक्षा मंत्री का बयान एक दो दिन पहले आया था। उन्होंने कहा था कि RSS की ही सीख का प्रभाव हो सकता है कि प्रधानमंत्री और वो खुद जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक का कड़ा फैसला ले पाए। और इस पर सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्री की बहुत उन्हें घेरा गया था और बहुत भला बुरा उन्हें कहा गया। इसी सर्जिकल स्ट्राइक से जुड़ी एक और खबर जो कल सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विदेश सचिव S. जयशंकर ने संसदीय समिति को बताया है कि ये पहली बार नहीं है जबकि ये स्ट्राइक हुई है इस तरह की, लेकिन ये स्ट्रेटजी के तहत है कि पहली बार ये जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है।
जबकि रक्षा मंत्री ने कहा था कि UPA के कार्यकाल में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
जी, ये पहले उन्होंने ऐसा कहा था।
समाचार पत्रों की सुर्खियां विस्तार से बता रही थी हरिता कांडपाल।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है 19 अक्टूबर दिन बुधवार और जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं जिसकी दूसरी कड़ी में अब हम आपको सुनवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा भी गाँव है जहाँ एक बड़ा अस्पताल, मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेडियम, हवाई पट्टी और तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे तरक्की, उन्नति, समृद्धि और संपन्नता का पता चलता है। हम चल रहे हैं उसी गांव में ये जानने के लिए कि विकास क्या सबको साथ लेकर चलता है या कुछ विकास से वंचित भी रह जाते हैं।
इटावा से सैफई की दूरी 22 किलोमीटर है लेकिन ये दूरी कैसे पूरी हो जाती है पता नहीं चलता है क्योंकि ये सैफई गांव ये एक वीआईपी गांव है। मुख्यमंत्री से लेकर के और कई एमपी, कई विधायक यहाँ पे हैं, एक ही परिवार के एक ही गांव में रहने वाले, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बड़ा सुगम होगा और वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इटावा से मैनपुरी जाने वाली सड़क पर दूर से ही पता चल जाता है कि अब हम सैफई गांव में पहुँच चुके हैं। गाँव के लोगों की बेफिक्री देख कर लगता है कि उन्हें काफ़ी कुछ मिला है और जीवन में संघर्ष की जगह बहुत कम है। इतनी जो बहुत सारी चीज़ हॉस्पिटल है, स्टेडियम है, ये सब बना है, इसका गांव वालों को क्या फ़ायदा मिला है? हॉस्पिटल का तो मिला है, ये खेल ओल का जो स्टेडियम है।
अबे खेले लो का चालू नहीं भाई हैंगे खेले लो मैं तो बच्चा पढ़ रहा है कॉलेज में पढ़े हैं, शिक्षा अच्छी मिली है।
आप लोग क्या खेती बाड़ी करते हैं?
हाँ खेती कर।
ये जो इन जगहों पर ज़मीनें हैं ज़्यादातर तो खेती वाली ज़मीनें चली गई हैं, अब खेती कहाँ होती है? खेती की ज़मीनें अभी हैं या?
हाँ जमीन है,
आधी आधी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें रह गई हैं, तो उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। अभी नेताजी का सब ये दिया हुआ है तो उसमें हमें कोई अफसोस थोड़ा ही है। अब
सब जमीन के सब पैसा मिला है और जैसे लोगों का मतलब अपना वो जो बेरोजगार आदमी उसका रोजगार मिल गया, कुछ लोगों को अस्पताल बना, उससे हम लोगों को सब सुविधा मिल रही पब्लिक को।
गाँव में विकास की तस्वीर देखने के लिए हम करीब 4,000 की आबादी वाले इस गाँव में खूब घूमे। हालांकि अब सैफई नाम से ही सैफई ब्लॉक भी है, सैफई तहसील भी है, लेकिन सैफई गांव अभी भी कागजों में इसी नाम से दर्ज है। सैफई के लोग बताते हैं कि उनका गांव दूसरे गांवों की तुलना में क्यों अलग है।
मंत्री जी ने बनवाया और क्या?
कौन मंत्री जी?
मुलायम सिंह ने।
तो बस एक ही मंत्री जी ने बनवाया और मंत्री जी भी
अखिलेश है, शिवपाल सिंह है,
सब मंत्री जी हैं। हां बिना के घर के सब मंत्री जी हैं,
तेज प्रताप और अखिलेश और काफी लोग, मुलायम सिंह, शिवपाल, ये सब मंत्री लोग हैं, बड़े लोग।
मिले हो किसी से?
नहीं।
तो तुम्हारे गांव के ही है?
गांव के तो हैं। सर इतनी सिक्योरिटी रहती है कि उनके पास तक जाने नहीं देते,
वो कभी घर पे आते ही नहीं है,
अपने बंगले पे जाते हैं और तुरंत हेलीकॉप्टर पकड़ के निकल जाते हैं।
यहाँ तुम लोगों से वोट मांगने नहीं आते?
नहीं, यहाँ वोट मांगने नहीं आते।
विकास और समृद्धि को दर्शाते इस गाँव में सब खुश ही है ऐसा नहीं है। कुछ लोग विकास के इस मॉडल को भविष्य के लिहाज से सही नहीं मानते। गांव की एक बुजुर्ग महिला कहती है,
नहीं सुविधा तो सेगे लाला अगला अब इतनी है कि जो छोटे लोग हैं तो ऐसी फैक्ट्री डाल वो चाहिए जो लोग लगे गरीब गुनी हैं। अब खेती वाले तो लग गए, अन खेती वाले क्या करें।
वहीं दूसरी ओर सैफई से लगे कुछ दूसरे गांवों का जब हमने रुख किया तो ऐसा लगा जैसे विकास रूपी नदी की धारा अचानक लुप्त हो गई है। गाँव का क्या नाम है? अरे अपने गाँव का नाम नहीं मालूम? इनको गांव का नाम नहीं मालूम है?
नगला बंजारो को डेरा।
आई बगल वाला कौन सा गांव है? उधर दिख रहा है बड़े घर और दिख रहे हैं।
सैफई।
सैफई जाते हो कभी गांव में?
अच्छा है सैफई गांव।
क्यों?
क्यों अच्छा क्यों नहीं? हम पड़े हैं झोंपड़ी में और वहाँ पे इतने इतने अच्छे गांव बने, हमें कोई सुविधा ही नहीं है।
वो सैफई है सीएम का गांव तो अच्छा लगता है, ये हमारा गांव है, गांव जैसा है।
यहाँ नहीं सीएम के घर का कोई आता होता है?
नहीं सर।
वोट मांगने भी नहीं आते?
नहीं सर।
क्यों?
क्योंकि अनिर्विरोध प्रधान है हमारा और जब वोट पड़ते हैं तब गाड़ी आ जाती है, चले जाते हैं, डाल देते हैं वोट।
और एमपी एमएलए का वोट डालने नहीं जाते?
नहीं सर।
हैं?
नहीं।
क्यों? आप लोग भी जाती हो कभी? बगल का गांव देखा है, एकदम शहर जैसा लगता है बिल्कुल।
और क्या शहर जैसा लगता है।
अब आपका गाँव?
आपका गाँव तो ऐसा ही लगता है जैसे है जैसे। अब दिक्कत ऐसी है कि अब कुछ गरीब लोगों को कुछ सावधान नहीं देते हैं।
जो पेंशन योजना चलती है आप लोगों को मिलता है कुछ की नहीं मिलता?
कुछ नहीं मिलता है। हमारा ये नल भी सरकारी टूटा पड़ा है, इसमें भी कोई नहीं सुन रहा है।
हालांकि ये गांव भी सैफई ब्लॉक में ही पड़ते हैं और इनकी सीमाएं भी एक दूसरे को छूती हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ के लोगों ने इसे शायद अपनी नियति ही मान लिया है। यही हाल सैफई ब्लॉक के कुछ अन्य गाँव का भी है।
हमारा गाँव टमरुआ लगता है, कोई विकास नहीं है किसी प्रकार का, खरंजा नहीं बंधा है, नाली नहीं बंधी है, कोई कुछ हुआ ही नहीं गांव के अंदर।
इसे पक्की सड़क वगैरह नहीं,
कोई चीज नहीं है।
अच्छा, तो क्यों आप लोग एमएलए कौन है आपके
यहाँ का? शिवपाल सिंह।
शिवपाल जी कहते नहीं है कि यहाँ का
खूब कहीं हमारे विकास ही नहीं हो रहा है।
जब मिल नहीं पा रहे सब मंत्री जी तो कहे यहाँ का हम लोग, मुख्य बात तो जो है चिमचा नहीं मिलन दे।
शंकर जी की नंदी है, पहुँचन नहीं देते। अब छोटे छोटे नेता आते हैं, मालिक कहते हैं बनवा देंगे करवा देंगे, ये काम करा देंगे, कोई होता कुछ नहीं।
नहीं, हर गांव में बिजली पहुंच रही, अब हर जगह कहीं 24 घंटे है तो कहीं 18-20 घंटे ही है। मेरे यहाँ एक पूरे गांव में कोई ही आज दिन तक लैटरिन बटी है नहीं, अब बट रही है। 100 रुपए 12,000 रुपए वाली बट रही और 2,000 रुपए प्रधान खाए रहो।
इटावा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सूरज सिंह यादव कहते हैं कि सैफई को छोड़कर इटावा जिले में विकास जैसी कोई चीज नहीं दिखती।
आप ताज्जुब कर सकते हैं कि यहाँ 3-4 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी इटावा जिला उद्योग शून्य है। एकमात्र यहाँ उद्योग था यूपी कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, वो इन 27 सालों में बंद हो गया है। धान के 105 धान मिल थे इटावा जिले में, आज की तारीख में 5 भी धान मिल चालू हालत में नहीं है। और वो ये कहते थे, कहते रहे हैं कि यदि हम यहाँ उद्योग खड़े करेंगे तो यहाँ कम्युनिस्ट पनप जाएंगे, मजदूर आंदोलन खड़े हो जाएंगे।
जहाँ तक सैफई गांव की ही बात है तो विकास का लाभ भी कुछ लोगों तक ही पहुँच पाया है। तमाम स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज मेडिकल विश्वविद्यालय स्टेडियम जैसी अकादमिक संस्थाओं के बावजूद इस गांव से राजनीति को छोड़कर अब तक किसी अन्य क्षेत्र में कोई ऐसी प्रतिभा भी नहीं निकल सकी जिसका कि उल्लेख किया जाए। शायद इसी वजह से कुछ लोग ये कहते हुए भी मिले कि विकास का ये पैटर्न और मॉडल एक ताकतवर राजनीतिक परिवार की स्वांतः सुखाए जिद को पूरा करने के सिवा और कुछ नहीं है। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी सैफई इटावा।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कल से डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू हुआ, जहां क्वालिफिकेशन मुकाबले में भारत के पी कश्यप एस्टोनिया के राहुल मस्ट से 59 मिनट तक चले कड़े संघर्ष के बाद 21-13, 8-21, 22-20 से हार गए। ऐसा लगता है कि पी कश्यप अभी भी पूरी तरह फिट नहीं है। उनके खेल को लेकर भारत के पूर्व एशियन चैंपियन दिनेश खन्ना कहते हैं,
हाँ बिल्कुल ऐसा है कि पी कश्यप जो है उनकी रैंकिंग पहले काफी ऊंची रही है और हर सुपर सीरीज में डायरेक्ट एंट्री उनको मिलती रही है। इंजरी की वजह से काफी देर तक नहीं खेल पाए और रैंकिंग नीचे आई और उसी वजह से उनको अब क्वालिफाइंग में खेलना पड़ता है। और जब एक प्लेयर उस लेवल का क्वालिफाइंग में खेलता है तो जाहिर है कि उसके ऊपर मानसिक दबाव भी काफी आ जाता है कि उसको क्वालिफाई किसी तरह करना ही है। और उसमें ये भी है कि आपको 2 मैचेस भी जो है वो एक्स्ट्रा खेलने पड़ते हैं मेन ड्रॉ में जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये मानसिक दबाव भी उनके ऊपर थोड़ा रह सकता है। और इससे ये भी लगता है कि एस्टोनिया के जो खिलाड़ी हैं जो उनसे हारे हैं कि शायद ये इतनी अच्छी फॉर्म में अभी नहीं खेल रहे और पूरी फिटनेस शायद वापस नहीं आई।
जबकि आज सबकी नजरें भारत की पीवी सिंधु पर रहेंगी, जो पहले दौर में चीन की ही बिंगजियाओ के खिलाफ खेलेंगी। रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता पीवी सिंधु को 6ठी वरीयता दी गई है। उनके अलावा पुरुष एकल वर्ग में भारत के बी साई परिणीत, थाईलैंड के तानुंग साक, साइन सोम बुनसुक से, अजय जयराम भी थाईलैंड के बुनसाक पोनसाना से, और पुरुष युगल वर्ग में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की जोड़ी डेनमार्क के किम एस्टोर्प और एंडर्स एकर रूप राम मुसिन का सामना करेगी। उधर रियो ओलंपिक में अपने मुकाबले से ठीक पहले डोपिंग में बाहर हुए भारत के पहलवान नरसिंह यादव के केस की जांच सीबीआई करेगी। नरसिंह यादव को रियो ओलंपिक से बाहर होने के अलावा 4 साल का प्रतिबंध भी झेलना पड़ा था।
भारत में बजने वाले हैं 7:00 और वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाने वाले रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा ने शिकायत न कर वोट जुटाने पर ध्यान देने की सलाह दी। भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति को जानकारी दी है कि नियंत्रण रेखा के पार पहले भी भारत की सेना ने निश्चित निशाने, सीमित क्षमता और आतंकवाद निरोधी अभियान चलाया है, लेकिन यह पहली बार है कि सरकार ने इस बारे में सार्वजनिक जानकारी दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। एक घंटे के बाद फिर हाजिर होंगे विश्व भारती लेकर। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।